लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह स्वतः को सुसमाचार के प्रकाश में नवीकृत करने की कृपा और शक्ति प्राप्त कर सके। आमेन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक नई रिपोर्ट बताती है कि कोविड-19 महामारी की वजह से पूरे विश्व में व्यापक पैमाने में रोजगार और आमदनी वाले कामकाज खत्म हुए हैं। लॉकडाउन और दूसरे सख्त नियम कायदों की वजह से दुनिया भर में बहुत सारे क्षेत्र ठप पड़ गए हैं या अस्त व्यस्त हो गए। सर्वाधिक प्रभावित अर्थव्यवस्था हुई एवं रोजगार में भारी गिरावट आई। कोरोना महामारी का सबसे बड़ा खमियाजा महिलाओं और बच्चों को उठाना पड़ा है। अब जब महामारी का असर कम होता दिख रहा है, तो ऐसे में विश्व के तमाम देशों सहित भारत भी इससे उबरने की कोशिश में है। संकट से उबरने के प्रयासों के दौरान कम संख्या में ही महिलाएं रोजगार में वापसी कर पाएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक आमदनी वाले कामकाज फिर से हासिल करने वाली महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कम होगी। एक रिपोर्ट के साथ प्रतिष्ठा जैन।
वर्ष 2019 और 2020 के बीच दुनिया भर में रोजगारशुदा महिलाओं की संख्या में 4.2% की कमी हुई, जबकि रोजगारशुदा पुरुषों की संख्या में 3% की कमी देखी गई। इसका अर्थ है कि वर्ष 2019 की तुलना में 2021 में रोजगारशुदा महिलाओं की संख्या लगभग 1,30,00,000 कम होगी। दुनिया भर में कामकाजी उम्र की केवल 43% महिलाएं वर्ष 2021 के दौरान रोजगारशुदा होंगी, जबकि ऐसे पुरुषों की संख्या 69% होगी। महिलाओं के रोजगार व आमदनी वाले कामकाजों पर ज्यादा असर की एक वजह उनका ऐसे क्षेत्रों में कार्यरत होना है जो तालाबंदी के कारण बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं। उदाहरण स्वरूप आवास, खाद्य सेवाएं और निर्माण व उत्पादन क्षेत्र। दुनिया के सारे क्षेत्र समान रूप से प्रभावित नहीं हुए हैं। मसलन रिपोर्ट में दिखाया गया है कि महिलाओं के रोजगार अमरीकी क्षेत्र के देशों में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, उसके बाद अरब देशों और फिर एशिया प्रशांत क्षेत्रों के देशों का स्थान है।
संयुक्त राष्ट्र की मौसम विज्ञान एजेंसी का नया अध्ययन दर्शाता है कि पिछले 50 वर्षों के दौरान व्यापक स्तर पर मानवीय और आर्थिक क्षति का कारण बनने वाली त्रासदियों की सूची में जल संबंधी संकट सबसे ऊपर है। यूएन एजेंसी के महासचिव पेटेरी टालस ने कहा, जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मौसम, जलवायु और जल संबंधी खतरों की आवृत्ति व गहनता बढ़ रही है। उन्होंने सचेत किया कि मध्य यूरोप और दक्षिण एशिया में बारिश व विनाशकारी बाढ़ की वजह से हुआ जानमाल का नुकसान मानवीय व आर्थिक असर को रेखांकित करता है। यूएन मौसम एजेंसी प्रमुख ने कहा कि भारी वर्षा की घटनाओं की वजह भी जलवायु परिवर्तन है। जैसे जैसे वातावरण गर्म होता है, इसमें ज्यादा नमी होती है, जिसका अर्थ है तूफानों के दौरान ज्यादा बारिश होगी और बाढ़ आने का जोखिम बढ़ जाएगा। कोई भी देश विकसित या विकासशील इससे अछूता नहीं है। जलवायु परिवर्तन यहाँ मौजूद है और घटित हो रहा है। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन में ज्यादा निवेश किया जाना अनिवार्य है और ऐसा करने का एक रास्ता बहु जोखिम समय पूर्व चेतावनी प्रणालियों को मजबूत प्रदान करता है। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
पिछले 50 सालों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण दुनिया के अनेक देशों में व्यापक स्तर पर मानवीय और आर्थिक तबाही हुई है। ऐसी त्रासदियों की सूची में जल संबंधी संकट सबसे ऊपर है। संयुक्त राष्ट्र मौसम विज्ञान संगठन ने अपनी नई रिपोर्ट के कुछ अंशों को शुक्रवार को जारी किया है। इस रिपोर्ट में वर्ष 1970 से 2019 तक उन 10 बड़ी आपदाओं की एक सूची तैयार की गई है जिनमें सबसे अधिक मानवीय क्षति पहुंची है। इस सूची में सूखा सबसे ऊपर है जिससे 6.5 लाख मौतें हुई हैं, तूफानों की वजह से 6.25 लाख, बाढ़ के कारण लगभग 58,000 मौतें हुई हैं। आर्थिक नुकसान के नजरिए से भी 10 बड़ी त्रासदियों की सूची तैयार की गई है जिनमें तूफान पहले स्थान पर है जिनसे $521 अरब का नुकसान हुआ है जबकि बाढ़ से $115 अरब का नुकसान हुआ है। आंकड़े दर्शाते हैं कि 5 दशकों में सभी प्राकृतिक आपदाओं में मौसम, जलवायु और जल संबंधी त्रासदियों का हिस्सा 50% है। यूएन एजेंसी ने चिंता जताई है कि जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मौसम, जलवायु और जल संबंधी खतरों की आवृत्ति और गहनता बढ़ रही है।
इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र विश्व विरासत समिति की ऑनलाइन बैठक चीन के फुजोऊ में हुई और 44वें सत्र के दौरान सांस्कृतिक, ऐतिहासिक व वैज्ञानिक महत्ता को दर्शाने वाले स्थानों को इस सूची में जगह दी गई। ताजा शामिल किए गए स्थलों में भारत का काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, ईरान में पार ईरानी रेलवे, चीन के क्वांजाओ में एम्पोरियम ऑफ द वर्ल्ड और स्पेन में पेसियो डेल प्राडो और ब्यून रेटिरो नामक स्थल हैं। भारत के तेलंगाना प्रांत में काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को धरोहर स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया है जो कि रामप्पा मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। 4 दीवारों से घिरे एक परिसर में यह एक मुख्य शिव मंदिर है जिसका निर्माण कार्य 1123 से 1323 के दौरान पूर्व शासक रुद्रदेव और रेचरला रुद्र के शासनकाल में हुआ। रेतीले पत्थर से बने इस मंदिर में ग्रेनाइट पत्थर से बने स्तंभों की नक्काशी की गई है। यूनेस्को का कहना है कि मंदिर के निर्माण में उच्च गुणवत्ता की शिल्प कला का प्रयोग किया गया है जो क्षेत्रीय नृत्य परंपराओं और काकतीय संस्कृति को प्रदर्शित करती है। कृषि योग्य भूमि से घिरा यह स्थल एक वन क्षेत्र की गोद में है जो रामप्पा झील के पास है। यह उस विचारधारा के अनुरूप है जिसमें माना गया है कि मंदिरों को प्रकृति के सानिध्य में होना चाहिए। विश्व विरासत समिति ने लिवरपूल मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी नामक संपत्ति को विश्व विरासत सूची से बाहर कर दिए जाने का निर्णय लिया है। यह संपत्ति की असाधारण वैश्विक महत्ता दर्शाने वाले तत्वों की भरपाई नहीं हो सकने वाला नुकसान होने के कारण ये फैसला लिया गया है। यूनेस्को की सूची में बाहर निकाला जाने वाला पहला स्थल ओमान में अरबी ओरिक्स अभयारण था जिसे शिकारी गतिविधियों व इन पशुओं के रहने के स्थानों की गुणवत्ता में गिरावट आने के बाद वर्ष 2007 में बाहर कर दिया गया। इस सूची से बाहर होने वाला दूसरा स्थल जर्मनी के ड्रेसडेन में एल्बे घाटी थी जिसे पूरी एल्बे नदी पर सड़क पुल बनाए जाने के कारण वर्ष 2009 में सूची से बाहर कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र विरासत संस्था ने विश्व विरासत स्थलों की सूची 1972 में शुरू की थी और सबसे पहले 12 विश्व स्थलों को इस सूची में जगह मिली थी। मौजूदा सूची में 1100 से ज्यादा विश्व स्थल शामिल हैं, जो अफगानिस्तान से लेकर जिम्बाब्वे तक 167 देशों में स्थित हैं। भारत में 30 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित सहित कुल 38 विश्व धरोहर स्थल हैं। आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
प्रेम का दीप जला दे मेरे मन में, शांति का दूत बना दे आके दिल का सागर तू, शांति का राजा भी तू। देव जला दे मेरे मन में,
शांति का दूत बना दे आके दिल
आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। वेटिकन में शुक्रवार को संत पापा फ्रांसिस ने अंतर्राष्ट्रीय कैथोलिक विधायक नेटवर्क के सम्मेलन के लिए एकत्र विधि निर्माताओं से मुलाकात कर उन्हें संबोधित किया। संत पापा ने कहा कि वर्तमान कालीन इतिहास के निर्णायक क्षण में विभिन्न राष्ट्रों के सांसदों और राजनीतिज्ञों से मुलाकात करने के लिए वे प्रसन्न थे। कार्डिनल शॉनबॉर्न तथा श्री ऑल्टिंग फॉन जेसाओ के नेतृत्व में रोम आए सांसदों का संत पापा फ्रांसिस ने हार्दिक स्वागत किया तथा सन 2010 में उक्त नेटवर्क की स्थापना के समय से ही परम धर्म पीठ के कार्यों को समर्थन देने के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि मानव कल्याण की दिशा में कलीसिया के मिशन को समर्थन देने के लिए वे उक्त नेटवर्क के विधायकों के आभारी हैं। संत पापा ने कहा कि विधायकों के साथ उनकी मुलाकात विश्व में व्याप्त एक कठिन क्षण में हो रही थी। उन्होंने कहा कि विगत कुछ समय से विश्व कोविड महामारी से संघर्ष करता रहा है। इस महामारी से लगभग 40 लाख लोग मर चुके हैं तथा 20 करोड़ लोग अभी भी रोगग्रस्त हैं। इसके अतिरिक्त महामारी के चलते विश्व की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था तहस नहस हुई है। संत पापा ने कहा कि ऐसी स्थिति में सांसदों की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने कहा, जन कल्याण हेतु आपके राजनैतिक कार्यों द्वारा आप सहयोग के लिए बुलाए गए हैं ताकि आप अपने अपने समाजों को नवीकृत कर सकें। केवल कोविड महामारी को समाप्त करने के लिए ही नहीं अपितु निर्धनता, सामाजिक असमानता, बेरोजगारी तथा शिक्षा के अभाव आदि घावों का उपचार ढूंढने के लिए आप बुलाए गए हैं। संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि यह बड़े दुख का विषय है कि विज्ञान और तकनीकी की अतिरिक्त तरक्की के बावजूद दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी आधुनिक तकनीकियों से वंचित है। उन्होंने कहा कि यह राजनीतिज्ञों के समक्ष प्रस्तुत एक महान चुनौती है कि वे विश्व के सभी लोगों तक नवीन तकनीकियों के लाभों को उपलब्ध बनाएं। यूरोप की ख्रिस्तीय कलीसियाओं और यूरोपीय कैथोलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलन के संघ ने सृष्टि के मौसम 2021 पर एक संयुक्त वक्तव्य जारी कर सृष्टि की सुरक्षा तथा मानव जाति के सामान्य धाम यानी कि धरती को पर्यावरण के ह्रास से बचाने के लिए प्रार्थना का आग्रह किया है। सृष्टि की सुरक्षा हेतु 1 सितंबर को ख्रिस्तीय एकतावर्धक प्रार्थना दिवस आरंभ हो रहा है जो असीसी के संत फ्रांसिस के पर्व दिवस पर 4 अक्टूबर को समाप्त होगा। संत पापा फ्रांसिस ने इस अवधि के विषय में कहा है कि हमारे सामान्य धाम की रक्षा का यह निर्णायक क्षण है। सृष्टि का मौसम 2021 ख्रीस्त के अनुयायियों के बीच संबंध का विशिष्ट समय है। यह ईश्वर और संपूर्ण सृष्टि के साथ संबंध स्थापित करने, मन परिवर्तन करने तथा सृष्टि की सुरक्षा के प्रति स्वतः को समर्पित करने का निर्णायक क्षण है। इस अवधि के दौरान एक संयुक्त एकतावर्धक परिवार के सदृश प्रभु ख्रीस्त के समस्त अनुयायी अपने सामान्य धाम की सुरक्षा हेतु प्रार्थना और कार्यों में एकजुट होते हैं। यूरोपीय कलीसियाओं और यूरोप के कैथोलिक धर्माध्यक्षों ने सृष्टि के मौसम 2021 के लिए प्रकाशित अपना वक्तव्य उत्पत्ति ग्रंथ से लिए गए अब्राहम के उस कथन से आरंभ किया, जब अब्राहम तंबू के द्वार के बाहर खड़े लोगों से मिलते वक्त कहता है, प्रभु यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो अपने सेवक के सामने से यों ही न चले जाएं। यूरोप के धार्मिक नेताओं ने कहा कि इस वर्ष अब्राहम का तंबू सृष्टि और हमारे सामान्य धाम की सुरक्षा के प्रति हमारे संकल्प का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है, ताकि हम संवाद और स्वागत की भावना में सृष्टि की रक्षा हेतु तत्पर रहें। यूरोप के धार्मिक नेताओं ने लिखा, बाइबल के इस पाठ की प्रज्ञा धरती की सुरक्षा हेतु यूरोप की कलीसियाओं की तीर्थ यात्रा और उसके संकल्प को दृढ़ता प्रदान कर उसे नवीकृत करता है। प्रार्थना और ठोस कार्यों द्वारा हम सब मिलकर सृष्टि की रक्षा का बीड़ा उठाएं, ताकि यह धरती बिना किसी भेदभाव के ईश्वर की समस्त संतानों का सामान्य घर और सामान्य धाम बन जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका के पर्यावरणविद ग्रेगरी अज़नार ने कहा है कि विश्वास और विज्ञान दोनों मिलकर जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न पर्यावरण के ह्रास को कम करने के प्रयासों में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकते हैं। बुधवार को साप्ताहिक आम दर्शन के अवसर पर संत पापा फ्रांसिस के विश्व पत्र लाउदातो सी अभियान के सदस्यों का नेतृत्व करने के उपरांत पर्यावरणविद ग्रेगरी अंस्नार ने वैटिकन रेडियो से बातचीत में कहा कि जलवायु परिवर्तन पर शोध और इससे संबंधित चुनौतियों का सामना करने के प्रयास में विज्ञान कैथोलिक विश्वासियों को उपकरण प्रदान कर सकता है। उन्होंने कहा कि संत पापा फ्रांसिस ने अपने विश्व पत्र लाउदातो सी की प्रकाशना कर वास्तव में मानव जाति को एक अनमोल वरदान दिया है, जिसमें पर्यावरण के अखंड विकास और उसके प्रति जिम्मेदारी का आह्वान निहित है। पर्यावरणविद अज़नार ने कहा, संत पापा फ्रांसिस, कलीसिया और लाउदातो सी को पर्यावरण के विषय में सुनने पर मैं जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पर लोगों में समझदारी उत्पन्न होते देख रहा हूं। उन्होंने कहा, हमें इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी होगी तथा लोगों और संपूर्ण विश्व की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एकजुट होकर काम करना होगा। श्री अज़नार ने कहा कि विज्ञान और धर्म इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। यूरोपीय संघ के कैथोलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों के आयोग कॉमेक के अध्यक्ष कार्डिनल जां क्लाउड होलेरिश ने यूरोपीय राष्ट्रों का आह्वान किया है कि वे आतंक और मृत्यु के भय से अपने देश का पलायन करने वाले हजारों अफगानी लोगों को शरण प्रदान करें। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता अधिग्रहण के बाद से राष्ट्र में निवास कर रहे विदेशी और विदेशियों की सहायता करने वाले हजारों अफगानी नागरिक 31 अगस्त के अल्टीमेटम तक देश छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। लगभग 80,000 लोगों को काबुल हवाई अड्डे से अन्यत्र ले जाया जा चुका है, तथापि जो लोग बच चुके हैं उनकी स्थिति गुरुवार के बम धमाके के बाद से और अधिक संवेदनशील और गंभीर हो उठी है। वैटिकन न्यूज से बातचीत में कार्डिनल होलेरिश ने कहा कि यूरोपीय संघ के धर्माध्यक्ष उन लोगों के लिए चिंतित हैं जो हताश हैं और अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि वे अफगानिस्तान के दमन चक्र से भयभीत हैं। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।